ओम शांति। आज जब हमने ईश्वरी ज्ञान और योग का पहला सप्ताह कोर्स के लेसन सुने, तब संकल्प में भी नहीं था कि बाबा का कार्य इतना विशाल होगा। और इस तरह से हम बेहद के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हर एक जब शुरुआत करता है ज्ञान और योग की, तो मन में एक छोटा सा संकल्प होता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अपने जीवन में शांति और सुख की अनुभूति करने का। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिलता तो वो बातें प्राप्त होती जो स्वप्न में भी नहीं होती, कभी सोचा भी नहीं। मैं समझता हूं हर एक के जीवन में अवश्य ये अनुभव होता है, भाई बहनों को देखकर उमंग आता है शुरू में, सबकी दिव्य जीवन देखकर, सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर, सबके मुख पे वो शांति की आभा देखकर, और जो मीठी मीठी वाणी वो सुनते हैं, तो शुरू में तो ऐसा ही लगता है जैसे कई नए भाई बहने अभी भी मधुबन होकर के जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, किसी शिविर में आते हैं, तो उनके दिल से ये निकलता है क्या सचमुच ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, ऐसा भी स्थान इस दुनिया में है। यही सुनाते हैं, हमने बहुत बहुत आश्रम देखे हैं, बहुत महात्माओं से मिले हैं, बहुत यात्राएं की हैं, लेकिन यहां कुछ अपने किस्म की अनुभूति हो। यहां सबका बहुत प्यार से लेन देन है, बहुत शांति से लेन देन है। कोई कोई तो इस तरह की बात कहते हैं, हमारे घर में चार मेहमान आ जाएं तो इतना ऐसा वातावरण होता, और एक दिन दो दिन के बाद तो ऐसा लगता कि अब ये कब गुड बाय करें। लेकिन यहां तो वो सब सुनते हुए बाबा सामने आ जाता है, साकार बाबा, बड़ी दादियां सामने आ जाती हैं, क्योंकि आने से ही हम आपको अपना थोड़ा सा अनुभव शुरू का सुनाते हैं। आए तो थे मेडिटेशन सीखने, शौक था। मेडिटेशन के साथ साथ जब भाई बहनों से बातचीत होती तो वो इतना मीठा बोलते, ऐसा लगता था ये इस दुनिया के लोग नहीं है, किसी और जगह से आए हैं, फरिश्ते लगते थे। और उससे ये उमंग आता था कि अगर ये इस तरह की जीवन बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। और ये अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता रही है। अभी क्लास के रूप में बैठ करके अनुभव की लेन देन करते हैं। शुरू में जब आए थे तो क्लास तो सुबह को बाबा की वाणी एक ही टाइम सुनते थे और रात को क्लास में सेंटर्स का सर्विस समाचार सुनते थे। दिन में जो सीनियर भाई बहने हैं उनका अनुभव सुनते थे और या बाबा के साथ मिलना जुलना रू रूहान करना। एक बात तो पहली पहली जो अनुभव में आती, जो मैंने कहा स्वप्न में भी नहीं, इच्छा जरूर सबकी होती है कि स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को अपना परिचय दे और परिचय देने के साथ साथ अपना संग का रंग दे। श्रीमत दे और जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाए ये तो कभी नहीं सोचा था। आज भी जब साकार मुरली सुनते हैं तो क्या देखने में आता, बाबा प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहा उसमें। रचता और रचना का सत्य ज्ञान क्या है जो सिवाय बाप के कोई सिखा ना सके, इतना स्पष्ट उसके साथ साथ याद कैसे करना है, याद का स्वरूप क्या है, वो भी स्वयं सिखाता और उससे फायदा क्या वो भी सिखाता। जब ये सारी बातें हम सीखते हैं और अपनी जीवन में परिवर्तन को देखते हैं, सभी जानते हैं सबसे पहले तो कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। जो पहले इच्छा होते हुए भी इतना मनोबल नहीं था, संग का रंग लगते ही उसका असर होता था और अब जब से बाबा को पहचाना, जब से इस बात को पहचाना कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है कि हम स्वयं भगवान से शिक्षा प्राप्त करके भगवान भगवती बन सकते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन सकते हैं और उसके लिए जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण धारण करने का प्रयास करते हैं, हिम्मत रखते हैं, उमंग रखते हैं और हिम्मत और उमंग रखने वालों को कैसे डायरेक्ट शिव बाबा की मदद मिलती है, ईश्वरी परिवार का संग मिलता है, संगठन का बल मिलता है, जीवन क्या से क्या बन जाती है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन इस समय जब चारों तरफ कलयुगी दुनिया में ऐसा वायुमंडल है, उसमें इतने शक्तिशाली आत्मा बन जाए हम, ये किसकी कमाल है, अपने भाग्य की भी कमाल है अपने पार्ट की भी कमाल है, लेकिन ऐसा भाग्य बनाने वाला, ऐसा पार्ट बनाने वाला कौन? जो बाबा हंसी में कहते हैं, बच्चे आपने तो मुझे बहुत ढूंढा, 63 जन्म ढूंढते रहे, यात्राएं करते रहे, मस्तक झुकाते रहे, जब तक मैं स्वयं ना आऊं तब तक मिलन नहीं होता। तो सबसे पहले इसी बात की बहुत दिल में खुशी रहती है, जब बाबा से हम पहली पहली बार मिले थे और उस मिलन में कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो बाबा के मां वाक्य हैं कि मैं दिव्य दृष्टि दाता हूं, दिव्य चक्षु विदाता हूं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया, साकार में सन्मुख शिव बाबा को अनुभव किया, बाबा के मस्तक पर वो दिव्य ज्योति, बाबा के नैनों से वो शक्ति, शांति और प्यार। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, इतने समीप बैठकर, बाबा के कमरे में बैठकर वो आत्मा की इच्छा पूर्ण हुई कि स्वयं भगवान हमसे मिल रहे हैं। और मन ही मन में उमंग आया जो पहली पहली मुरली में सुना था, जैसे बाबा ने अनुभव किया और शिव बाबा के हुक्म के अनुसार सब तन मन धन बाबा ने सेवा में लगा दिया, पावन बनने और बनाने की सेवा में, नव सृष्टि की स्थापना की सेवा में। तो बाबा ने मुरली में ही कहा था, बच्चों को फॉलो करना चाहिए बाप को। तो मन में आया कि हम, बाबा तो बहुत कारोबार था बाबा का, बाल बच्चे थे, बाबा सरेंडर हुए, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है दुनिया की, कुछ हमें ऐसा कारोबार को भी बंद करने का खास नहीं है। तो मन ही मन में संकल्प किया कि बाबा जब आप सृष्टि पर आ गए हैं तो हमारा फर्ज है आपके कार्य में हम अपना जीवन दे दें, यही हमारा सौभाग्य होगा, इससे बढ़ के और क्या सौभाग्य। लेकिन ना बाबा को बताया ना किसी और को बताया, लेकिन शिव बाबा जानी जाननहार है, बच्चों की बातों को समझ सकता, उस बात को जानते हुए बाबा ने भी अपनी तरफ से पूरा समय दिया, असीम प्यार दिया और शक्ति दी, ताकि हम इस योग्य बने जो बाबा का कार्य है उसको हम सफल कर सके। आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, वो तो कलयुग के अंत में पहुंचे हुए हैं, सभी जानते हैं 84वें जन्म में, जो पहले जन्म में आए कोई तो शक्ति है उसमें, पर जो ईश्वरी परिवार में आज हैं, जो सत्युगी दैवी आत्माएं हैं, जो पुनर्जन्म लेते लेते पहुंचे वो तो 84 जन्म में है, शक्ति खत्म हो चुकी हो। तो फिर से इस कलयुगी संसार में जीवन को पावन बना के चलना, उसके लिए शक्ति चाहिए। दूसरों के लिए भी हम सहयोगी बन सकें उसके लिए भी शक्ति चाहिए। वो शक्ति दाता स्वयं डायरेक्ट गाइडेंस दे, श्रीमत दे, पालना दे। और जैसे अपने लौकिक बच्चे को, लौकिक स्टूडेंट को गाइड करते हैं, इस तरह से बाबा की गाइडेंस। और बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा किस रूप में रहता है, जैसे आज सुबह की वाणी सबने सुनी होगी, अव्यक्त वाणी थी लेकिन बोलने वाले तो वही बाप दादा। सफलता के सितारे, तो बाबा हर एक बच्चे को चाहे पत्र लिखते, किस नजर से देखते कि ये बाबा के नैनों के नूरे रतन है। हमें जब पहला पहला पत्र का जवाब आया था बाबा से, यही शब्द, बाबा के नैनों के नूरे रतन। अब आप सोचिए, थोड़ा भावना प्रदान होकर के भी सोचिए कि किसने ये शब्द कहे, किसने ये शब्द लिखे, किसके नैनों के सितारे बने हो। तो सबसे पहले तो इसी बात का ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भाई बहनों को नशा चाहिए, खानदानी नशा चाहिए। क्योंकि आज की जो ये टॉपिक दी गई है, बाबा के द्वारा दिए हुए सम्मान, तो यही पहली बात तो मैं समझता हूं हर एक को। जैसे लौकिक में अपने खानदान का नशा रहता है, इसी तरह से अलौकिक परिवार के सदस्य होने के नाते, अलौकिक परिवार कहने में आता ब्रह्मा कुमारी इस ब्रह्मा कुमार, पर ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार किस खानदान के हैं? ब्राह्मण खानदान के, सच्चे सच्चे ब्राह्मण खानदान के। ब्राह्मण खानदान के माता पिता कौन है? तो जब ये बुद्धि में आ जाए कि हम ईश्वरी संतान, जिससे ऊपर और कोई खानदान है नहीं, इससे बढ़के और कोई नहीं, ये खानदानी नशा अगर आ जाए तो अपने जीवन का लक्ष्य ही इतना श्रेष्ठ बन जाता। दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन आ जाता, चलन में इतना फर्क पड़ जाता और बुद्धि का सोचने का तरीका ही बदल जाता है। क्योंकि इस स्मृति से ही हर एक के साथ व्यवहार में आए थे। तो पहला पहला तो सम्मान मैं मानता हूं यही है कि हम अपने मात पिता की स्मृति से, अपने खानदान की स्मृति से इस महान महान भाग्य को बुद्धि में रखते हैं कि हम इस समय जो बाबा कहता है, ये आपका हीरे तुल्य जीवन है। सत्युग में सोने तुल्य है, त्रेता में चांदी तुल्य है, द्वापर में, कलयुग में उससे नीचे है। लेकिन वर्तमान समय जब हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सन्मुख होते हैं, सारे कल्प में 5000 साल में ये एक ही बार, एक ही जन्म का भी ये अंतिम समय है इस टाइम पर जब हम ये अलौकिक जन्म प्राप्त करते तो ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है, इसका बहुत नशा चले और यही नशा हमें महान आत्मा बना देता है। अगर ये नशा नहीं रहता, इसको भूल जाते हैं, तो फिर महान बनने की जो बात है वो बुद्धि से खिसक जाती। और इसके साथ साथ बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए हम बच्चों को, नूरे रत्न, फिर इसके साथ में सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं भले देवताओं को वो सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, पर वास्तव में ये आप बच्चों का टाइटल है। उनको तो सुदर्शन का ज्ञान ही नहीं है, ये तो बाप इस समय आप बच्चों को आपके पूरे 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञानवान जिसमें सारे वेदों शास्त्रों का सारा ज्ञान आ जाए और आत्मा को अपने 84 जन्मों का, 100 का, सारे सृष्टि चक्र का नटशेल में ज्ञान आ जाए, इससे बढ़के और क्या चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा, वेद और शास्त्र पढ़ने वाले भी इस चीज को प्राप्त करने के लिए सारी उम्र लगा देते हैं, उनको वो प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भल देखने में सभी बाबा के बच्चे साधारण हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखने में कहते हैं वो साधारण तन में आए शिव बाबा, लेकिन वो असाधारण है। इसी तरह से बाबा का हर एक बच्चा, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता, हर एक पिता असाधारण है, क्योंकि ये ईश्वरी ज्ञान, ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान जो आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। 600 करोड़ में से कितने लोगों के पास ये ज्ञान, परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत ही कम। तो ऐसे महान ज्ञानी तो आत्मा बनना बड़े भाग्य की बात है। और फिर इसके साथ साथ सुदर्शन चक्रधारी के साथ साथ बाबा ने आप समान बनाया है, इतने तक सीमित नहीं रखा कि बस अब आप सुदर्शन चक्रधारी बन गए। नहीं, बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बन के चक्रवर्ती राजा भी बनना है, उसके लिए विश्व कल्याणकारी बनना है। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, आप बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। अब माता जी सोचेंगी मैं तो अपने गांव में बैठी भोजन बनाती, परिवार को खिलाती, मैं विश्व कल्याणकारी कैसे हूं। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर आज भी सुबह बताया, जब आप बाबा को याद करते हैं उस याद से जो वातावरण को शुद्ध करते हैं, तत्वों को शुद्ध करते हैं और नई सृष्टि के स्थापना के लिए अपनी उंगली देते हैं, उस गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए वो स्वतः ही सिद्ध कर देता है कि एक एक उंगली से ये विश्व का कल्याण होता है। उस नाते से आप हर एक विश्व कल्याण का, और जिसका जो पार्ट है जितना उसको योग्यता से निभाते हैं वो योग्य पार्टधारी बनते हैं, और इतने योग्य बनते हैं जो बाबा आपके पार्ट को रिप्लेस नहीं करता है, ये नहीं कहता कि नहीं इस कल्प में तो आपने ये बजाया, अगले कल्प में कोई और बजाएगा, कहता नहीं, हर कल्प आप बच्चे इतना अच्छा पार्ट बजाते हो विश्व को परिवर्तन करने का, इसलिए हर कल्प में आपका पार्ट ये नूंदा हुआ है। उसका बड़ा नशा चाहिए कि हम पहली बार बाबा से नहीं मिल रहे, ये तो कल्प कल्प बाबा हमसे मिलते हैं, कल्प कल्प हमें बाबा आकर के ज्ञान दे करके वारस बनाते हैं और साथ साथ इतना योग्य बनाते हैं जो हम विश्व के मालिक बन सके। ऐसा नशा जब रखते हैं तो दिल में बहुत खुशी रहती है, संतुष्टता रहती है, आनंद रहता है। जो दुनिया में कितना भी किसके पास प्राप्ति हो, ये आनंद नहीं रहता, ये खुशी नहीं रहती। इस हिसाब से आप सोचिए कि सारे सृष्टि चक्र में जो पार्ट बाबा ने दिया है वो हीरो और हीरोइन का पार्ट, बाकी सब संत महात्मा मुक्ति पाने के लिए सोचते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे क्या चाहते हैं? क्या मुक्ति में रहना चाहेंगे, मोक्ष में रहना चाहेंगे? जो रहना चाहते हैं हाथ खड़ा करो जरा, एक भी नहीं है। क्योंकि हीरो एक्टर तो स्टेज पर ही शोभता है, घर में सोया रहे तो उसका क्या फायदा, सामने माताएं बैठी हैं तो माताओं को देख करके बाबा के दिनों की एक बात याद आ रही है कि सब कहां आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो उन दिनों में भी माताएं आती थी, दिल्ली की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से कुछ बुजुर्ग माताएं, गांव की रहने वाली, वो ट्रेन में आ रही थी, बड़ी खुशी खुशी आपस में बातें करते हुए बाबा से मिलने जा रहे। तो जो टीटी था टिकट कलेक्टर, उस उनकी बातों को थोड़ा बहुत सुने, थोड़ा उसके समझ में आए, थोड़ा ना आए, रहा नहीं गया, उसने पूछा माताजी कहां जा रहे हैं? कहते हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो उसने सोचा शायद इनके कोई पोतरा पढ़ता होगा यूनिवर्सिटी में, पर माउंट आबू में तो यूनिवर्सिटी उस तरह की नहीं है कोई भी। तो फिर से पूछा माताजी किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? बोला ईश्वरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जहां भगवान खुद पढ़ाते हैं। तो ऐसे निश्चय वाली, ऐसे नशे वाली माताओं ने क्या विश्व सेवा नहीं की? इतने पढ़े लिखे टिकट कलेक्टर को ऐसा नशे का जो जवाब दिया, उसके तो कपाट खुल गए। फिर उसने और कई प्रश्न पूछे और माताओं ने उसको ज्ञान सुना करके बाबा का परिचय दिया, बहुत खुश हुआ। तो बाबा ऐसी माताओं की इतनी महिमा करते हैं। बाबा कहते थे अगर माताएं ना हों तो सेंटर हरा भरा नहीं होता है, कन्याएं ना हों तो सेंटर चलाने वाले कहां से आएंगे। लेकिन साथ साथ भाइयों का भी पार्ट है, क्योंकि उन दिनों में तो और बात थी। बड़े हंसते हंसते बहनें कहती थीं, देखो शिकार आप लाएंगे, तीर हम लगाएंगे। लेकिन नहीं, शिकार की बात नहीं, विश्व सेवा की बात। और ऐसी कई बातें हैं जो भाइयों को निमित्त बन के करनी पड़ती है। बहनों का अपना रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, माताओं का अपना इंपॉर्टेंट, भाइयों का अपना इंपॉर्टेंट है, कुमारों का अपना इंपॉर्टेंट है। चारों ही हम मानते हैं चार पहिए की गाड़ी है ये, ईश्वरी परिवार जो है, ईश्वरी सेवा का जो कार्य है, विश्व कल्याण का जो कार्य है, ये चार पहिए वाली गाड़ी है। उसमें कुमारी, कुमार, माता, पिता चारों चाहिए, और चारों को, चारों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर एक पहिया ना चले तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बाबा ने एक एक की महिमा अपने हिसाब से की है, सभी जानते हैं। माताओं को कहा, आप सिर्फ माता नहीं हो, क्या हो? विश्व माता हो। कन्याओं को कहा, आप कन्या नहीं हो, ब्रह्मा कुमारी हो। और ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ बोला, नहीं, पूजनीय देवी हो, दुर्गा हो, अंबा हो। और इसी तरह से भाइयों को बोला, आप तो बाप समान हो, मास्टर ब्रह्मा हो। और कुमारों को इस तरह के ऊंचे टाइटल दिए तो हर एक को अपना नशा चढ़ा। कभी कभी जब वो नशा नहीं होता ना तो कह देते हैं, भाई बाबा तो ऐसे ही कहता है। क्या ऐसे ही कहता है बाबा? नहीं, बाबा हमारे फाइनल स्थिति को देख करके कहता है, बीच की स्थिति को नहीं। जब पुरुषार्थ करते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंचाई निचाई आती है, पर बाबा तो जानता है कि यही मेरे बच्चे क्लब पहले वाले हैं, जिन्होंने अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके और फाइनल स्थिति को पाना है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, अभी तक माला फाइनल नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि कई बच्चे तो अभी आ रहे हैं, इस ग्रुप में भी तो पहली बार आने वाले बहुत होंगे, तो कई आ रहे हैं, कई बाबा से मिलने वाले हैं। और उसमें बाबा ने कहा, कई तो लास्ट में आने वाले, इतने फास्ट जाने वाले हैं जो पहला नंबर लेने वाले हैं। तो बाबा हमेशा बच्चों को खूब नशा चढ़ा करके, हिम्मत दे करके, ऐसे भी सीन देखे हैं कि बच्चों में हिम्मत नहीं होती है। कई बार हर एक अपने को जानता है, लेकिन बाबा उनको प्यार से इतनी शक्तिशाली दृष्टि दे करके आत्मा को उस समय इतना बल भर देता जो हिम्मत आ जाती है। एक एक मिसाल सामने, हमारे सामने आता है। एक युगल कलकत्ता से आए बाबा से मिलने के लिए। बाबा उन दिनों बॉम्बे में थे और बाबा ने एक दिवाली के दिन थे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र छपवाया था सबको गिफ्ट देने के लिए। जब वो आए तो बाबा ने वो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र मंगा के उनसे मुलाकात के समय उस भाई को, बहन को एक्सप्लेन किया कि बच्चे देखो, बेहद का बाप इस समय इस सृष्टि पर आए हैं और ऐसा बनाने के लिए आए हैं, उसके लिए राजयोग सिखा रहे हैं। और बात करते करते बाबा ने पूछा, ऐसे बनेंगे? तो बहन तो ज्ञान में थी, लेकिन भाई साथ दे रहा था पर जरा ठीक से नहीं दे रहा था। तो भाई ने कहा कि हाँ बाबा, अगर आप हिम्मत देंगे तो हम बनेंगे। बाबा ने कहा, इसके लिए ही तो बाप सन्मुख आए। जैसे शिव बाबा डायरेक्ट उनसे बात कर रहा हो, इसीलिए तो बाप सन्मुख आए हैं, हिम्मत देने के लिए आए हैं। बोलो बनेंगे? तो उसने बोला हां बाबा बनेंगे। बांधे राखी, अभी शीलेंद्रा राखी लेकर के आओ जल्दी। उसी टाइम उस भाई को राखी बांध दी। ऐसा बाबा का तुरंत दान, महापुण्य का पार्ट प्रैक्टिकल देगा। और वो भाई बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहा है। इस तरह से और कई सीन बाबा के देखे। कोई वीआईपी मिलने आ जाए तो उस समय बाबा को ये रहता था, ये बच्चे भले वीआईपी हैं लेकिन कलयुग के अंदर वीआईपी का और सत्युग में विश्व महाराजन या राजन बनने का या वहां की प्रजा बनने का, उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। इस बच्चे को मैं क्यों नहीं ऐसा वारस बनाऊं? और बाबा उनको जब अच्छी तरह एक्सप्लेन करते, कभी कभी तो ऐसा होता था बाबा के पास आए कोई मिलने, एक वो भी बॉम्बे की बात याद है, एक भाई कोई बहुत प्यार से बाबा से मिलने आए, एडिटर थे अखबार के। तो वैसे मीडिया वाले जो हैं नॉर्मली उनका उन दिनों का जो लिखने करने का तरीका अपना था, इतना कोई समझते नहीं थे। तो जब मिलने आए तो बाबा ने कहा कि भाई मैंने तो टाइम तो दिया नहीं। तो मैंने कहा बाबा बड़े प्यार से रिस्पेक्ट से आपसे मिलने चाहते हैं। कहा अच्छा बाबा 5 मिनट सिर्फ मिलेगा और हॉल में मिलेगा। जी बाबा जैसे आपकी प्रेम। फिर पता नहीं बाबा को क्या आया, बाबा ने कहा अच्छा चलो उसको इधर ही बुला लो, बाबा के रूम में ही बुला लो। और बाबा के रूम में बैठ करके बाबा जब भी मिलते थे तो ऐसे नहीं मिलते थे कि बाबा गद्दी पे बैठे और जो मेहमान है उसको के नीचे बिठाएं, नहीं, नीचे सफेद चादर बिछा के बिछी रहती थी बाबा के रूम में। नीचे बाबा खुद बैठते और उनको भी सामने बिठाते, दृष्टि देते। और फिर जैसे कोई नया स्टूडेंट कोई सामने आ जाए, बहनें जैसे समझाती हैं, बहनें 7 दिन में वो समझाती, बाबा 1 घंटे में सारा कोर्स करा देता। त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी नारायण का चित्र सब एक साथ लेकर के एक एक करके समझाने का। तो पहले तो 5 मिनट का कहा, उसके बाद पता नहीं बाबा को क्या आया, उसको बिठाया, बहुत प्यार से उसको दृष्टि थी, बहुत बड़ी उम्र के थे वो भी, और उसके बाद उनको 1 घंटा समझाते रहे। इतना उनको भाई को अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा हुआ, उसके अखबार में जो एडिटोरियल अपनी एग्जीबिशन का खास उसने लिखा। इसी तरह से एक दूसरा भाई, वो सिंधी अखबार का था, बाबा से मिलने आया, ये 1966 की बात कह रहा हूं। तो आते ही बैठते ही बाबा से कहता है, बाबा, बाबा नहीं कहा, दादाजी, दादाजी मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, स्व अनुभूति कराओ। तो बाबा ने कहा ये स्व अनुभूति कौन करना चाहता है, ये कौन बोलता है, बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? तो वो तो बेचारा इतने के मैं, बाबा ने कहा मैं कौन? और फिर जवाब बाबा ने खुद ही दिया, ये मैं कहने वाला आत्मा है, अभी इस निश्चय में बैठो मैं आत्मा। और उसको सामने दृष्टि देते देते उसी समय जो बताया ना आपको, देवे दृष्टि दाता देवे चक्षु विदाता, स्वयं भगवान जब किसी को दृष्टि दे तो आप सोचो उसका तो कल्याण हो गया। उसी टाइम पर उसको जो अनुभव हुआ उसके बाद मुख से ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो गया बाबा, जो दादा कहते थे पहले, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को سندھ میں دادا کہتے تھے، تو دادا کی بجائے پھر بابا کہنا شروع کیا اس نے، اور بعد میں اس کا انبھو سنایا کہ مجھے ایسا انبھو ہوا کہ میرے سامنے روحانی شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اس، اور اس کے بعد وہ خود پورا گیان میں تو کیا آیا، لیکن کتنے گروپس بامبے سے یہاں شبر کے لیے لے کر کے۔ تو اس طرح سے جب ہم بابا کو ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں، بابا کے کارے کو سمجھ لیتے ہیں اور بابا کے وارث بچے بن جاتے ہیں، تو سیوا آٹومیٹکلی بابا کی دل سے ہوتی ہے کہ ہم وشو کلیانکاری باپ کے بچے وشو کا کلیان کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ بابا ایک جگہ نہیں رہنے دیتا، اتنے تک نہیں کہ بس ہم بابا کے بن گئے، وارث بن گئے، بس بہت ہو گیا، نہیں۔ بابا کہتا آپ سروسیبل بچے ہو، آپ کا ہر سنکلپ، آپ کا ہر بول، آپ کا تن من دھن سب سیوا میں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ جب ہر بات کے ہر پہلو سے آپ یہ بیج بوئیں گے تو سری لکشمی سری نارائن جیسا اونچ پد پائیں گے۔ یہ نہیں کہتے آپ سادھارن ہو اس لیے آپ پد نہیں پا سکتے، نہ، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو، سادھارن سے سادھارن گاؤں کے رہنے والے کو بھی بابا وہی لکش دیتا ہے، جو بہت پڑھے لکھے بہت دھنوان کوئی ہو ان کو وہی لکش دیتا۔ اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ بھگوان کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہنسی میں کہہ دیتا تھا جو بابا ہے غریب نواز، جو اس سمے غریب ہیں ان کو بابا سب سے امیر بناتا ہے، اور جو اس سمے اپنے آپ کو بہت دھنوان سمجھتے نا ہم اس سمے ہی سورگ میں ہیں ان کو غریب بنا دیتا ہے۔ کارن کہ اس سنگم یگ پر جنہوں نے اپنا تن اپنا من اپنا دھن اپنا سمے اپنا سنکلپ سفل کیا سیوا میں، وہ تو دھنوان سے دھنوان بن جاتے، اور جو کنجوسی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر لیتے، کیونکہ لاسٹ میں تو سب ایسا ہی جانے والا ہے۔ اس لیے اپنے سمے کو بابا کہتا ہے اس سمے آپ بچوں کا آپ ہو وی وی آئی پی۔ یہ ایک اور نشے والی بات بابا کی تھوڑا یاد آتی ہے کہ وہ وی آئی پی ہوتے ہیں، وی وی آئی پی ہوتے ہیں، آپ تو بھگوان کے بچے ہو، وشو سیوا دھاری ہو، وشو کلیانکاری ہو، ہوونہار دیوتا ہو، اس ناتے سے آپ تو مہان تے مہان تے مہان تے مہان پدما پدم بھاگے شادی ہو۔ تو وی آئی پی کے سامنے، وی وی آئی پی کے سامنے بھلے دیکھنے میں آپ سادھارن ہو پر ہیں وی 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 آئی پی ہے۔ تو ایسے جو بابا کے بچے ان کا اس سمے کا جو پارٹ ہے اس کو تھوڑا دھیان میں رکھنا پڑتا۔ بابا کہتے کوئی بھی آپ کے سامنے آئے اس کو کچھ دینا ہے، کیونکہ ساری دنیا اس سمے شانتی کی بھکھاری ہے، پریم کی سچے پیار کی بھکھاری ہے، ستیتا کی بھکھاری ہے، اور وہ خزانے سب آپ کے پاس ہیں۔ اس لیے کوئی بھی سامنے آتا، چاہے درشٹی سے چاہے شبھ بھاونا سے، آج بابا کی وانی میں تھا شبھ بھاونا سے، اور چاہے جیسے ڈاکٹر بنارسی کچھ باتیں سنا کے گیا، کسی بھی طریقے سے اس سنسار کو کچھ دینا ہے، विश्व पर राज करना है तो पहले विश्व की सेवा करनी है। विश्व की आत्माओं को अगर सत्युग में लाना है तो पहले उनको जो आज जरूरत है, प्यासे को पानी चाहिए तो वो देना है, भूखे को रोटी देनी है। इस समय सभी सुख और शांति की भूख से तड़प रहे, इसलिए विश्व कल्याणकारी बाप के ऐसे सभी तरस करने वाले, तरस रखने वाले, ऐसे जब हम अपने आप को बाबा के योग्य बच्चे समझें, दाता के बच्चे दातापन में सुख महसूस करें, तो जितना हो सके स्वयं भरपूर रहें। ये नहीं कि अपने पास हो नहीं और हम देना ही चाहते हैं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, दूसरों को देने का है तो वहां तो कुछ तीर नहीं लगेगा। पहले सवेरे सवेरे खुद को भरपूर करो, अच्छी तरह से, याद से, मुरली से, विचार सागर मंथन से, और फिर हर समय देने का लक्ष्य रखो। तो जितना इस समय बीज बोएंगे श्रेष्ठ कर्म का, बीज बोना सिर्फ धन की बीज की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा शुभ भावना का, सच्चे स्नेह का, सच्ची शांति का जो दान है, वो जितना दान करेंगे उससे अपना भी खजाना और बढ़ता जाता, और साथ साथ आज जो इस संसार को जरूरत है जिस चीज की, वो पूरी करने में हम बाबा के राइट हैंड बनेंगे। तो जो आज बाबा के राइट हैंड बनेंगे, सत्युग में किसी और को बाबा बादशाही नहीं देगा। फिर जिन्होंने गांधी जी को मदद की, वो बाद में कोई गवर्नर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई कुछ बना, उसको बाबा कहता ये तो लंगड़ा मान है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए बने, फिर कुर्सी को खिसका लेते हैं। लेकिन बाबा तो आपको कितना समय के लिए मान देता है, 21 जन्म के लिए। बाबा तो कहता 84 जन्म के लिए, 21 जन्म तो संपूर्ण पावन, संपूर्ण धन धान्य संपन्न, विश्व महाराजन, विश्व महारानी ऐसा बना देता है। और बाद में भी थोड़ी कमी आती है, लेकिन 84 जन्म ही सदा स्वस्थ, सदा धन धान्य संपन्न, सदा सुखी, सदा सौभाग्यवती, हर प्रकार से बाबा इतना महान बनाता है। तो ऐसे बाबा को सदा दिल से प्यार करते रहें, बाबा को अपने नैनों में, जैसे बाबा अपने नैनों में बच्चों को समाता, तो बाबा को हम अपने नैनों में समा के रखें और सदा उसके प्यार के गीत दिल से गाते रहे, तब देखो क्या से क्या बन जाते। उसके लिए बाबा ने कहा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। आज एक वाणी 81 की पढ़ी मैंने, 81 की, जिसमें बाबा ने बिंदु की बहुत महिमा की। आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और सारा ज्ञान जो है वो भी बिंदु, ड्रामा। करना भी क्या है, बिंदु को याद करना, और उसमें इतनी शक्ति है। बाबा ने मिसाल दिया कि स्थापना के लिए भी बिंदु, सर्वशक्तिवान बाप, और विनाश के लिए वो अणु, अणु बम के लिए वो भी अणु की शक्ति जो है वो भी बिंदु है, तो वो अपना काम तो कर रहे हैं विनाश वाले, लेकिन स्थापना के लिए जो निमित्त हैं वो बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करते, स्वयं में शक्ति भरते, सर्वशक्तिवान से मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करते चलें, तो विश्व कल्याणकारी का पाठ सहज बजा सकेंगे। ओम शांति। अभी सभी भाई बहने थोड़ा टाइम, ज्यादा नहीं आपका टाइम लेंगे, 5-7 मिनट इसी स्वरूप में बैठे कि ऐसा महान भाग्य और किसका नहीं, हम बच्चों का है और हम बच्चे हैं ज्योति बिंदु स्वरूप, आए हैं ज्योति की दुनिया से, जहां हमारा अनादि अविनाशी पिता ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा है, उनसे हम संग का रंग, स्वयं में शक्ति भरते सर्वशक्ति स्वरूप बनकर सारे विश्व को शांति का दान दे।